उनसे ये प्रार्थना करने लगे संतान के, तो उनकी प्रार्थना सुनकर स्वयं भगवान श्री बलराम आविर्भूत हुए सती माता के घर में। तो बलराम के अवतार जब सती माता के गर्भ में आए, जिस प्रकार भगवान कृष्ण के अवतार से पहले बलराम माता देवकी के गर्भ में आए थे और बाद में देवकी के गर्भ से स्थानांतरित हुए थे रोहिणी के घर में बलराम, तो ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले स्वयं बलराम का आविर्भाव हुआ सती माता के गर्भ। और जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया विश्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, उनका नाम विश्वरूप था। और किंतु विश्वरूप भी बहुत सुंदर थे देखने में और बहुत ज्ञानी थे, शास्त्रों का ज्ञान बाल्यावस्था से ही उनको शास्त्रों का ज्ञान हो गया और बहुत विरक्त रहते थे, संसार के प्रति उनमें कोई आसक्ति नहीं। और इस प्रकार विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया। जब माता पिता ने सोचा कि विश्वरूप का विवाह करेंगे तब विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, और जब एक बार घर छोड़कर गए तो कभी फिर नहीं आए घर। तो इसलिए पिता माता बहुत दुखी थे विश्वरूप को खोकर, और आठ संतानों के बाद एक पुत्र संतान हुआ, फिर वो भी नहीं रहा, वो भी सन्यासी हो गया, तो पिता माता को कितना दुख नहीं हुआ। तो बाद में एक दिन जगन्नाथ मिश्र और सती माता भगवान विष्णु की पूजा करते रहे और इस प्रकार दुखी होकर भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे थे, तो एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि एक ज्योति उनके शरीर में प्रवेश कर रही, एक ज्योति का प्रवेश हुआ उनके शरीर में, और वो ज्योति उनके शरीर से जाकर सती माता के हृदय में प्रवेश किया। तो इस प्रकार देखकर जगन्नाथ मिश्र ने सती माता से कहा कि हमने एक ऐसा देखा स्वप्न की जैसे कोई ज्योति हमारे हृदय में प्रवेश कर गया और उस मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में प्रवेश किया। तो सती माता को ज्योति प्रवेश करने के बाद सती माता को गर्भधारण हुआ, तो सती माता बहुत सुंदर दिखने लगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु को धारण करने के कारण सती माता बहुत सुंदर दिखने लगी, उनके शरीर से ज्योति निर्गत हो रही, जैसे भगवान कृष्ण को धारण करने के कारण देवकी के शरीर से भी ज्योति निकल रही थी और उस ज्योति से सारा अंधकार दूरीभूत हो रहा था, तो उसी प्रकार सती माता भी सारे अंधकार को दूरीभूत कर रही थी। और कभी कभी आकाश में ये देवतागण आकर स्तुति करते थे सती माता की, क्योंकि भगवान को गर्भ में धारण किए हुए थी, तो देवतागण स्तुति कर रहे थे। तो सती माता देख रही थी कि सब आकाश में जैसे देवतागण उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बताया कि ऐसा मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे महान पुरुषगण ये किसी की स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़कर मेरी ओर देख रहे हैं और किसी की स्तुति कर रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र और सती माता इस प्रकार सोच रहे थे कि किसी महापुरुष का उनके घर में जन्म होने वाला, उनको ये आभास हो रहा। और जगन्नाथ मिश्र जब सती माता को देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि जैसे घर में लक्ष्मी का निवास हुआ है, सती माता इतनी सुंदर दिख रही। और जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि जब से तुम्हारा गर्भ रहा है तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। बिना मांगे लोग मुझे सब सारे द्रव्य दे देते हैं, घर में जो कुछ आवश्यक है वो सब मिल जाता है। मैं किससे मांगता हूँ फिर भी लोग आकर अपने आप दे जाते हैं, कोई चीज की कमी हमारे घर में नहीं। और मैं जहाँ जाता हूँ लोग तो मेरा आदर सम्मान करने लगते हैं। तो ये सब कुछ अभिनव बातें मैं देख रहा हूँ। पहले मुझे ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं था, किंतु जब से तुम्हारा गर्भ रहा है तब से मुझे सम्मान प्राप्त हो रहा है और घर में हर चीजें भी उपलब्ध है, कोई चीजों की कमी नहीं। जैसे घर में लक्ष्मी निवास कर रही है तो ऐसा क्यों न हो जब लक्ष्मी के पति स्वयं आने आए हैं इस घर में तो लक्ष्मी तो निवास करेगी इस घर में। तो इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र और सती माता दोनों विचार कर रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन लाखों करोड़ों लोग सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं और हरी हरी ध्वनि कर रहे हैं, तो बहुत भीड़ है नवद्वीप। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई पता नहीं। और उसी भीड़ में जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो चारों ओर आनंद और परिव्याप्त होने लगे, तो लोग इस शिशु को देखने के लिए आने लगे। बहुत सारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी ये सब आने लगे जगन्नाथ मिश्र के घर पर इस शिशु को देखने के लिए। तो कुछ लोगों को तो जगन्नाथ मिश्र पहचानते थे और ऐसे कुछ लोग आते थे जिनको वो पहचानते भी नहीं। तो वस्तुतः ब्रह्मा शिव आदि देवतागण ये ब्राह्मण का रूप धरकर आए थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और उनकी पत्नियां जैसे सावित्री और गौरी, पार्वती, सरस्वती और देवस्त्रियां ये सब ब्राह्मणी का रूप धारण करके सब आई चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और तरह तरह के उपहार लेकर आई। तो जगन्नाथ मिश्रा और सती माता ये सब उनको आश्चर्य हो रहा था कि इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, सारे देवता आ रहे हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके और कोई पहचान नहीं सकता। नवद्वीप में भी जो ब्राह्मण उनके साथ मिलकर आ रहे हैं मनुष्य रूपों में, ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में आ रहे हैं, तो लोगों की भीड़ लगी है जगन्नाथ मिश्र के घर पर। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, किसी को पता नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र तो इस भीड़ को देखकर विह्वल हो रहे हैं। सब लोग आकर पुत्र का दर्शन करते हैं, उपहार देकर जाते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र सोच नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए किस स्थिति में। तो फिर उसी समय अद्वैत आचार्य शांतिपुर में थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो अद्वैत आचार्य उस समय आनंद में नृत्य कीर्तन करने लगे अचानक, और हरिदास ठाकुर उनके साथ थे। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो गया आचार्य का, ये अचानक बैठे थे और तुरंत उठ करके नृत्य कीर्तन करने लगे हैं, तो इसका क्या पीछे रहस्य है। हरिदास ठाकुर इस प्रकार सोच रहे थे। और उसके बाद अद्वैत आचार्य कुछ काल तक हरिदास ठाकुर के साथ नृत्य कीर्तन करने के बाद फिर गंगा में स्नान करने के लिए चले गए, क्योंकि ग्रहण का अवसर था। तो गंगा में स्नान करने के बाद दान देने की विधान है। तो अद्वैत आचार्य ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उद्देश्य से उन्होंने ब्राह्मण को दान दिया गंगा के तट पर। इस प्रकार अद्वैत आचार्य बहुत आनंद में थे और हरिदास ठाकुर समझ नहीं पा रहे थे कि अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं। वो तो सोच रहे थे कि जैसे ग्रहण के अवसर पर दान देना विधि है, इसलिए अद्वैत आचार्य दे रहे हैं। इंद्र अद्वैत आचार्य का उद्देश्य कुछ अलग था। इस चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उद्देश्य को दान दे रहे थे और ये किसी को पता नहीं। और उसके बाद अद्वैत आचार्य ने अपनी पत्नी सीता देवी को भेजा था चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए और उनके हाथ उपहार देकर उन्होंने भेजा। तो इधर श्रीवास पंडित और चंद्रशेखर आचार्य आदि जो वैष्णवगण थे मायापुर में नवद्वीप में, तो ये सब आनंद में नृत्य कीर्तन कर रहे थे और गंगा स्नान करके भी हरिनाम उच्चारण करते हुए दान कर रहे थे। और जब उनको ये समाचार मिला कि जगन्नाथ मिश्र को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, तो लोग तुरंत आए उनके घर पर। आकर जब देखा इस पुत्र को, तो लोग आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा सुंदर शिशु उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं। ये शिशु इतना सुंदर है और उसका अंग है, सारे अंग इतने निखुण है, उसमें कोई हमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष है और बहुत सुंदर। हर अंग ये निर्दोष रूप में बना हुआ और गौरवर्ण शरीर है शिशु का। तो ये जैसे भगवान कृष्ण जैसे दिख रहा है, केवल वर्ण में अंतर है। कृष्ण श्याम वर्ण ही ये गौरवर्ण। तो देखकर उसमें शिशु में सारे महापुरुष लक्षण देखकर श्रीवास पंडित आदि ये बहुत प्रसन्न हुए और जाकर जगन्नाथ मिश्र से कहा कि मिश्र आप इतना विवल मत हो, अब आप पुत्र प्राप्त हुए हैं तो इसके लिए आप जो विधि है उसका करना चाहिए। तो जगन्नाथ मिश्र उनके कहने पर आग्रह पर पुनः फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उपरांत उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि उन्होंने प्रदान की और घर में जो कुछ था, जो कुछ उपहार में मिला था और घर में जो कुछ भी था, सब कुछ जगन्नाथ मिश्र ने प्रदान किया ब्राह्मण। फिर भी कहां से और भी द्रव्य आ जाते थे जगन्नाथ मिश्र को पता नहीं चलता था। कितने लोग आते थे, कितने लोग विभिन्न उपहार लेकर आते थे, तो उनका घर भरा रहता था। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव उत्सव का पालन हुआ और नृत्य कीर्तन चारों ओर हरिना हरि ध्वनि, इसी के बीच चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और सीता माता सीता ठाकुरानी जो कि अद्वैत आचार्य की पत्नी थी वो दूसरे दिन आकर पहुंची। और आकर जब पुत्र को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ये तो साक्षात ब्रजनंदन कृष्ण है। कृष्ण और इस शिष्य में कोई अंतर नहीं है, केवल वर्ण में अंतर है। तो अद्वैत आचार्य की पत्नी लाई थी बहुत सारे अलंकार चैतन्य महाप्रभु के लिए और सती माता के लिए, अलंकार के साथ वस्त्र भी लाई थी शिशु के लिए और माता के लिए। तो उसको उपहार लेकर आई थी और उन्हें दुर्बा अक्षत से शिशु को आशीर्वाद प्रदान किया और शिशु का इस प्रकार नामकरण किया निमाई के रूप में। सीता ठाकुरानी ने नामकरण किया था निमाई, इसलिए किया था कि शिशु जैसे सती माता और जगन्नाथ मिश्र के पहले के संतान नहीं रहे, इसलिए ये संतान भी इसका कुछ ना हो और वे दीर्घजीवी हो, इस उद्देश्य से उन्होंने निमाई नामकरण रखा। निमाई का अर्थ है जो नीम पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु, तो उस दृष्टि से उनका नाम तो निमाई रखा गया। और नीम का जो पेड़ होता है, नीम के पेड़ के पास भूत प्रेत नहीं आते, जहाँ नीम का पेड़ होता है वहाँ भूत प्रेत नहीं आते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ नीम के पेड़ के नीचे, उनका नाम सीता ठाकुरानी ने रखा निमाई, जिससे कि भूत प्रेत भी उनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सके। और इस प्रकार सीता शक्रानी वहां रही कुछ दिनों तक, और जब तक सत्य माता का स्नान नहीं हुआ सुतिया ग्रह से वो बाहर नहीं निकले। अतः सुतिया ग्रह से बाहर निकलने के बाद उन्हें स्नान किया और सीता ठाकुरानी ने उनको तो वस्त्र और आभूषण आदि प्रदान किए। तो इस प्रकार सत्य माता और जगन्नाथ मिश्र का सम्मान किया सीता ठाकुरानी अगस्ताचल्य सपने। तो जगन्नाथ मिश्र सत्य माता ने भी सीता ठाकुरानी का सम्मान किया, और उसके बाद वो सुना शांतिपुर आई। तो नीलांबर चक्रवर्ती जो कि सत्य माता के पिता थे, जब इस शिशु का जन्म हुआ तो उन्होंने, वो बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य थे, तो उन्होंने गणना करके इस शिशु की कोष्ठि बनाई, जातक बनाया, और गणना करके ये जगन्नाथ मिश्र से बता दिया उसी दिन कि ये जो शिशु हैं इसमें सारे महापुरुष के लक्षण दृष्टिगत होते हैं। तो जातक जो कह रहा है, जातक गणना में जो निकल रहा है, और हम देख रहे हैं कि इस शिशु के शरीर में भी वो सारे महापुरुष के लक्षण दृष्टिगत होते हैं, ये सब है। इसलिए ये शिशु एक महापुरुष है और ये सारे जगत का उद्धार करे, और उसके साथ साथ पितृकुल और मातृकुल का भी उद्धार करे। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने उसी दिन बता दिया था जगन्नाथ मिश्र के कानों। तो उसके बाद शिशु का जात संस्कार हुआ, और जब चैतन्य महाप्रभु उस समय सोए हुए थे शैया पर थे छोटे के रूप में, तो उस दिन देखा सती माता, जब वो अपना पैर उछाल रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय सती माता ने और जगन्नाथ मिश्र ने देखा, नहीं सती माता ने पहले देखा कि उस शिशु के चरण में कुछ चिन्ह शंख वज्र अंकुश ध्वज आदि चिन्ह, जो चिन्ह विष्णु के चरण में होता है, भगवान विष्णु या कृष्ण के चरण में होता है शिशु चिन्ह, तो उस शिशु के चरण में वो चिन्ह था। तो जब सती माता ने देखा तो उसने बुलाया जगन्नाथ मिश्र, उस समय में चल रहे थे, हाँ चल रहे थे। तो एक दिन वस्तुतः सती माता ने देखा कि उनके घर में ये सब चिन्ह अंकित है घर पर, तो उनको लगा कि कोई पैदल चल के गया है, तो उसमें जो चरण चिन्ह पड़े हुए थे घर पर उसमें ये शंख चक्र अंकित। तो जब सती माता और जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि ये तो भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है, तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं, तो हो सकता है शालिग्राम में भगवान है, तो भगवान शायद चल के गए हैं हमारे घर पर, इसलिए उनके चरण का ये चिन्ह पड़ा है, तो छोटे छोटे पद चिन्ह पड़ा है। तो ये सोचकर वो रह गए, उनको पता नहीं था कि किसका चरण थे, तो उन लोगों ने सोचा कि ये हमारे शालिग्राम हम पूजा करते हैं, तो वो शालिग्राम की वितरण करते हैं हमारे घर में, इसलिए उनका चरण चिन्ह पड़ा। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, जैसे शिशु लोग रोते हैं तो वो रोने लगे, तो सती माता ने उनको अपनी गोद में उठा लिया, स्वयं पान करने कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए। जब सती माता ने चैतन्य महाप्रभु अपनी गोद में उठा लिया, और चैतन्य महाप्रभु संपन्न कर रहे हैं सत्य माता का, तो उसी समय सत्य माता ने देखा उनके चरण, तो जो चिन्ह घर पर पड़े हुए थे शंख चक्र वज्र अंकुश आदि, तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सत्य माता ने देखा वो सारे चिन्ह, तो उसको देखकर सत्य माता ने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। और जब जगन्नाथ मिश्र आए तो उन्होंने भी देखा चैतन्य महाप्रभु के चरण में सारे चिन्ह जो पड़े थे उनके घर पर, तो मुझे लगा उनसे कि विष्णु के चरण का चिन्ह है, तो ये विष्णु कोई साधारण विष्णु नहीं है। तो तुरंत तो नीलांबर चक्रवर्ती जब आए और उनको दिखाया ये चरण चिन्ह, तो नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि हमने तो पहले ही बोल दिया था कि ये शिशु कोई साधारण शिशु नहीं, इसमें 32 महापुरुष का लक्षण व्यक्तिगत है, इसके जातक में है और इसके शरीर में भी, और ये स्वयं नारायण है। बोले नीलांबर चक्रवर्ती ने बता दिया, उन्होंने कहा कि हमने तो बता दिया था उस समय और वो इसके जातक में हमने लिख के रखा भी है, तो ये स्वयं नारायण है और ये शिशु सारे जगत का उद्धार करेगा, सारे जगत का पालन करेगा, इसलिए इसका नाम विश्वंभर होगा और ये पितृकुल मातृकुल का उद्धार करेगा। इसमें सारे लक्षण नारायण के, तो ये कहकर उन्होंने कहा कि इसका जात संस्कार नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए, तो आज अच्छा दिन है, आज ब्राह्मण लोगों को बुलाइए और ये मास्टर है। तो उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का नामकरण मास्टर जगन्नाथ मिश्र ने बुलाया ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को, नामकरण उत्सव का आयोजन किया और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वंभर रखा गया। पहले तो सीता ठाकुर ने निमय रखा था और नामकरण संस्कार में विश्वंभर रखा गया उनका नाम, किंतु चैतन्य महाप्रभु अपने शैशवावस्था में बाल्यकाल में ये बहुत रोते थे और जब कभी रोते थे ये स्त्रियां उनको शांत करने के लिए माने जो भी प्रयत्न करती थी फिर भी उनका रोना नहीं रुकता था। तो किसी ने एक बार बोल दिया हरी हरी, तो तुरंत ही महाप्रभु का रोना रुक गया हरी हरी सुनते। तो ये स्त्रियां ये सोचने लगी कि हरी बोलने से उसका रोना रुक जाता है, तो जब कभी चैतन्य महाप्रभु रोने लगे तो सब स्त्रियां हरी हरी बोलने लगी और जब वो हरी हरी बोलती थी तो उनका रोना रुक जाता था, तुरंत चैतन्य महाप्रभु हंसने लगते रोना बंद कर। तो स्त्रियों को ये गुप्त रहस्य पता चल गया कि जब कभी रोएगा इसको हरी हरी बोलने से उनका रोना रुक सकता है। तब से चैतन्य महाप्रभु बार बार जब रोते थे ये स्त्रियां एक साथ मिल करके हाथ ताली देकर हरी 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 बोल बोलती, तब तुरंत चैतन्य महाप्रभु स्थिर हो जाते, शांत हो जाते थे और स्त्रियों को देखकर उनके मुखों को देखकर हंसने लगते थे। तो इस प्रकार स्त्रियां भी हंसने लगती थी चैतन्य महाप्रभु को देखकर, उनके सुंदर मुखमंडल और हंसी को देखकर वो भी हंसने लगती। और जबकि चैतन्य महाप्रभु का शरीर गौरवर्ण का था तो इसलिए स्त्रियां ये कहने लगी चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि हरी हरी तो हंसने लगता कहती थी, अब वो गौर हरी कहने लगी क्योंकि वो गौरवर्ण के थे और हरी शब्द से शांत हो जाते थे, इसलिए स्त्रियां उनको कहने लगी गौर हरी गौर हरी गौर हरी। तब से उनका नाम गौर हरी पड़ा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के कई नाम हुए, निमाय विश्वंभर गौर हरी गौरांग। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार जन्म से पहले हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया, हरिनाम के बीच उनका आविर्भाव हुआ और जन्म के उपरांत भी वो सबसे हरिनाम के कहलाते हैं। रोने के बहाने सबसे हरिनाम कहलाते हैं, हर कोई हरिनाम करने से वो शांत हो जाता। इस प्रकार ये युग धर्म का प्रवर्तन बचपन से जन्म से ही कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बाल्य लीला कर रहे थे और बहुत सारे देवतागण वो आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, तो मनुष्य रूप से कभी कभी गुप्त रूप से आकर स्तुति करते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब हम बाल लीला कर रहे थे, धीरे धीरे वो घुटनों के बल पर चलने लगे, तो एक बार एक बहुत बड़ा सांप आया और चैतन्य महाप्रभु आंगन में खेल रहे थे, तो उन्होंने तुरंत जाकर सांप को पकड़ लिया। उसको देखकर सारे लोग तो भयभीत हो गए। पहले तो सांप को देखकर भयभीत था, जब किसी को जाने ले आने के लिए जा रहे थे तो किसी ने पकड़ लिया सांप को, तो सब लोग डर गए। अब किसी का क्या होगा, सांप तो उसको काट देगा, किसी की तो मृत्यु निश्चित है। तो सब लोग भयभीत होकर तो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे किसी की रक्षा के लिए, क्योंकि उस सांप के पास शाम को कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि शिष्य ने पकड़ा है शाम को, और शाम को कुछ करेंगे तो शिष्य के शरीर में आघात लग सकता है, और शिष्य को ला भी नहीं सकते क्योंकि शिष्य ने पकड़ा है शाम को, कि बड़ा विषम स्थिति। न शिष्य को शाम से ला सकते थे, न शाम को मार सकते थे। तो इस प्रकार भयभीत स्थिति में सब लोग बोले कि अब क्या होगा, अब तो शिष्य की मैंने कहा कि मिट्टी नहीं तो क्या है, ये जो खई धन से होता है, और धन कहाँ से होता है, मिट्टी से, ये मिट्टी का ही रूपांतरण है, और संदेश भी उसी प्रकार मिट्टी का ही रूपांतरण है। मिट्टी से घास होता है और घास गाय खाती है, उस घास से दूध बनता है और दूध से संदेश बनता है, तो ये मिट्टी नहीं तो क्या है। तो मिट्टी खाने में और इसको खाने में तो कोई अंतर है नहीं। मैं एक छोटे शिशु के मुख से इस प्रकार का सिद्धांत सुनकर वो तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। निमा को इस प्रकार का सिद्धांत कैसे बता देना। तो सत्य माता ने कहा कि निमा तुम्हें ये सब सिद्धांत किसने सिखाया। तो फिर सत्य माता ने निमाय को समझाया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं, इस प्रकार तत्व की बात कहकर माता के सामने अपना ऐश्वर्य प्रकाश कर रहे हैं। किंतु सत्य माता ने निमाय से कहा कि निमाय देखो, यद्यपि ये सब मिट्टी से बना है, फिर भी मिट्टी का यह रूपांतर, तुम कह रहे हो ये मिट्टी का रूपांतर है, तो मिट्टी का यह रूपांतर तुम अगर दिखाएगा जैसे खई और संदेश, तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा। तुम यदि मिट्टी खाएगा तुम्हारे शरीर में रोग होगा। ये अंतर है दोनों में। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और उस घड़े में हम पानी को रख सकते हैं, किंतु कोई कहेगा ये घड़े जो मिट्टी का घड़ा और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, और यदि हम मिट्टी में कोई पानी रखना चाहें, मिट्टी में थोड़ा गड्ढा करके, तो उसमें क्या हम पानी को रख सकते हैं।
तो मिट्टी तो पानी को पी जाएगा। तो यद्यपि घड़ा मिट्टी से बना है, फिर भी घड़ा में पानी रखना और मिट्टी में पानी रखने में अंतर है। तो सत्य माता ने समझाया कि तुम ये यद्यपि मिट्टी से बना है, इसको खाने से तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा, और केवल तुम मिट्टी खाएंगे तो तुम्हारे शरीर में रोग हो, इसलिए तुम्हें मिट्टी नहीं खाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माता तुम इतना कुछ जानती हो तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तो अब चैतन्य महाप्रभु अपने ऐश्वर्य को लुकायित कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर हम पहले इसको जानते तो हम कभी मिट्टी नहीं खाते। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु माता की गोद में उठ गए दूध देने के लिए। हंसते हुए माता की गोद में जब उठ गए तो सत्य माता ने उनको गोद में लेकर अपना दूध पिलाया, और इस प्रकार सत्य माता बहुत प्रसन्न हुई। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सब लीला कर रहे थे। और एक बार वो जब वो चलना सीखा चैतन्य महाप्रभु ने, तो घर के बाहर गए तो बाहर दूसरे लोगों के घर पर जाते थे, घर पर जाकर जैसे भगवान कृष्ण चोरी करते थे इस तरह चैतन्य महाप्रभु भी चोरी करते थे, लोगों के घर में घुस कर किसके घर में जाते थे, कोई वस्तु उठा लेते थे और खा लेते थे, जैसे भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे, दूध पी लेते थे, दही खा लेते थे, और कोई द्रव्य रखा है घर में खा लेते थे, चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा करते थे। और किसी के घर पर और कुछ नहीं मिलता था तो जाते थे उसका जो शिशु कोई बच्चा उसके घर पर हो, सोया हुआ बच्चा रहता है, तो उसको जाते थे और उसको आघात करके उठा लेते थे, या उसको आघात करते थे तो बच्चा चिल्लाने लगता था, तब भाग जाते थे। तो ऐसे लीला करते थे, तो अपने जाकर उसको नाखून से आघात करते थे, बच्चा रोने लगता था तो भाग जाते थे। दोस्तों, बाहर के लोग आकर तो जब अभियोग करते थे तो एक दिन सत्य माता ने निमाई से कहा कि निमाई तुम क्यों जाते हो दूसरों के घर पर चोरी करने के लिए, हमारे घर में कोई कुछ कमी है क्या, तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, तुम क्यों जाते हो। तो इस प्रकार सत्य माता उनको उपदेश देते थे, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सब लीला करते थे। तो एक बार दो चोर आए और चैतन्य महाप्रभु के शरीर में बहुत सारे अलंकार, तो चोरों ने सोचा कि इसको हम लोग उठा करके ले लेंगे और इसको मार के इसके अलंकार को ले लेंगे। ये सोच करके एक चोर ने चैतन्य महाप्रभु को लालच दिखाया, उसको मिठाई दिया, निमाई मिठाई खाओगे, ये लोग ऐसे बच्चों को लालच दिखाते हैं। तो मिठाई उनको देकर चोर ने कहा कि हमारे साथ आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर के पास पहुंचा देंगे। ये कहकर एक चोर ने उनको कंधे पर उठा लिया, और उनका उनकी योजना थी कि इसको इसके घर से दूर कहीं ले जाएंगे और जंगल में लेकर इसको मार के इसके अलंकार से ले लें। तो ये सोचकर चोर चैतन्य महाप्रभु को अपने कंधे पर बिठा करके लेकर जा रहे हैं उनके घर से दूर, और इधर चैतन्य महाप्रभु को घर में ना देखकर और उनके पिता माता दूसरे लोग खोजने लगे उनको। तो किसी ने कहा कि वो खेलने गया होगा, तो जाकर जहाँ खेलते थे वहां भी खोजा, कहीं निमाई दिखाई नहीं, चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले कहीं। तो चारों ओर खोजने लगे, तो जब नहीं मिले तो पिता माता व्याकुल होने लगे, कहाँ गया, रोज तो खेलता था, चला आता था, अब कहाँ गया, नहीं मिल रहा है, चारों ओर लोग खोज रहे हैं और कहीं नहीं मिल रहा है। तो सत्य माता और जगन्नाथ मिश्र बहुत व्याकुल थे, तो इधर ये चोर दोनों चोर चैतन्य महाप्रभु को लेकर जब जा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने वो क्योंकि वो तो सबके अंतर को जानते हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं और वो जानते थे कि चोर क्या करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी योग माया को योग माया का प्रयोग किया तो योग माया ने इन दोनों चोरों की बुद्धि इस प्रकार भ्रमित कर दी जिससे कि ये दोनों चोर चैतन्य महाप्रभु के घर से दूर क्या जाएंगे उनको पता नहीं चला, वो उसी रास्ते में आ रहे हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु का घर पड़े। घूमते हुए वो उसी रास्ते में आ रहे हैं, योग माया उनको निर्देशित कर रही है, उनको पता नहीं। और वो तो सोच रहे हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु घर से दूर जा रहे हैं जंगल जंगल की तरफ। तो अचानक उन लोगों ने देखा चैतन्य महाप्रभु का घर सामने और लोग खोज रहे हैं, निमाय निमाय पुकार रहे। तो लोगों को देखकर ये दोनों चोर डर गए। उन दोनों ने सोचा कि ये लोग सब निमाय की खोज कर रहे हैं, निमाय निमाय पुकार रहे हैं और हमारे कंधे पर निमाय को देखकर ये लोग सोचेंगे ये दोनों चोर हैं, क्योंकि दोनों चोर थे ही तो हम लोग को पकड़ने आ जाएंगे। ये सब करके निमाय को वहीं छोड़ करके दोनों भागे। तो लोगों ने देखा कि कोई दो व्यक्ति आए थे निमाई को छोड़ करके भाग गए। तो निमाई को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और आनंदित होकर दौड़ करके आए चैतन्य महाप्रभु को लेने के लिए। सती माता जगन्नाथ में सभी आकर उनको गोद में उठा लिया। तो फिर लोग खोज करने लगे कि कौन ऐसा सज्जन व्यक्ति है जो हमारे लड़के को लेकर आया, हम लोग इतना खोज कर रहे थे नहीं मिला, तो दोनों कौन है। लोग खोज कर रहे हैं लेकिन उनका आता पता नहीं क्योंकि वो तो चोर थे, दोनों भाग गए। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि दोनों कहाँ चले गए, कहाँ से तुमको प्राप्त किया और लेकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारी बातें बताई, ये नहीं बताया कि हमने अपनी योग माया से भ्रमित किया कैसे बताया कि ये दोनों कैसे उसको लेकर उनको नहीं करा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी इस प्रकार बाल्य लीलाएं हैं जो कृष्ण की लीला के समान बहुत आनंदमय लीला जिसका श्रवण करने से व्यक्ति नित्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का बाल्य का वो व्यतीत होगा। तो और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, समय अभी हो रहा है, मतलब शोर है। तो ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु के इस जन्म उत्सव के अवसर पर हम लोग चैतन्य महाप्रभु के चरणों में विनम्र नमन निवेदन करते हैं और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हमारे हृदय में चमेल जो संसार वासना की धूल है उसको शुद्ध करके हमारे हृदय में प्रेम को प्रदान करें जिसके लिए उनका अवतार हुआ था, उस व्रत प्रेम का एक कारण प्रदान करें जिससे कि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए और हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री कृष्णनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वाविर्भाव तिथि महामहोत्सवती यथाविधोत्तमानंदे।
जी वैसा ही होता है, जैसे इस प्रकार जीव है यहाँ पर, ऐसे दूसरों मन में वैसे जी बस वो जीव है ना तो ये भगवान के सब नित्य पार्षद है ना, तो भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं वो लोग जाते हैं उनके साथ मिला के तो ये तो वो लोग आ सकते हैं, अच्छा लीला में सहायक जो असुरों की लीला करते हैं वो लोग भी आते हैं असुर भगवान की लीला में सहायक बनो। कृष्ण सेवा के लिए जो अनुकूल उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना। तो इस प्रकार हम शरणागत हो सकते हैं भगवान के चरण में और कृष्ण प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और हमें हर समय ये सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे एकमात्र रक्षक हैं, एकमात्र पावक हैं, और इस प्रकार उनके चरण में शरणागत हो रहा है। किंतु शरणागत भक्त का लक्षण है तो यहाँ पर सब ब्राह्मणों का यही उद्देश्य है कि हम कैसे इस भौतिक संसार से भगवान कृष्ण का शरणागत हो सकते, मुक्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री यह हर व्यक्ति को जानना पड़ता है कि कैसे जीव आता है, कैसे संसार में कष्ट हो सकता है और इन कष्टों से मुक्त होने का क्या उपाय है, इसलिए हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इसलिए मनुष्य जन प्राप्त हुआ है, मनुष्य अनुराग और सम्मान इस मनुष्य का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर वही पशु पक्षी चीत पतंग जीवन है जन्म है। और इस प्रकार भौतिक संसार में हम भटकते हुए कष्ट भोग करते रहे। इसका प्रतिकार ये है कि हमें सदा सर्वदा भागवत में सुनना चाहिए, निश्चय भागवत से प्रबल में सिस्टम किया तो प्रतिदिन भागवत प्राचीन भागवत सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी भोग की प्रवृत्ति अभी जारी नहीं है। बहुत जन्मों से ये भोग की प्रवृत्ति बनी हुई है और इस भोग की प्रवृत्ति के कारण ही जीवित भोग के संसार में आता है। वो भोग करना चाहता है इंद्रिय भोग, जबकि हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में आए हैं, फिर भी हमारी भोग की प्रवृत्ति नहीं गई। तो जब हम सुनते हैं हमें अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि इस भोग की प्रवृत्ति कैसे मुक्त होंगे, किंतु जब हम इसको नहीं सुनते हैं तो इसको भूल जाते हैं जो जो सुना है। पर प्रार्थना सीखने से हम या तो पहली बार तो हम सुनते नहीं, या तो हमें नींद आती है प्रार्थना, इसलिए हम सिर्फ बैठे रहते हैं, सुनने का अभिनय करते हैं, लेकिन कुछ अंध हो जाता है, सब ऊपर ऊपर चला जाता है। और कोई सुनता नहीं है तो सुनते समय उसका मन और कहीं लगा हुआ है, ये कभी नहीं सुन रहा था कि जितने लोग बैठे हैं सब लोग सुन रहे हैं,
किसी का मन अलग नहीं है, कोई घर के बारे में सोच रहा होगा, कोई सफर के बारे में सोच रहा होगा, कोई किसके बारे में सोच रहा होगा, किसी का नहीं। तो इससे हम जो सुन रहे हैं हर चीज अंदर नहीं रहती, ये तो हम ये मानकर बैठते हैं यहाँ पर लोग आश्रम में रहने के लिए तो पास में बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर डांटेंगे, नहीं तो बुलाएंगे, सुनने का आग्रह नहीं है। जिसको सुनने का आग्रह है और वो सुनेगा तो उसके बाद मनन करेगा, हाँ हम मतलब सुना था, ये संसार ऐसा है ऐसा, हर बार अपने मन को समझाए, ये मन ही दुष्ट है और मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन सोचता रहता है तुम भोग के बारे में, ढाय तो विषयान कुंसा मंग से लाए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन हर समय विषय भोग के बारे में सोचता रहता है। और हम मन को अभी सबसे देंगे सोचने के लिए तो मन कहेगा वो लाओ वो लाओ ये लाओ, मन बचाएगा तो फिर मन का दास बन कर हम कहेंगे हाँ मन कह रहा है तो हमें करना पड़ेगा। तो माया इस प्रकार ग्रास करती मन के माध्यम से आती है माया, इसलिए मन पर कभी विश्वास नहीं करना या मन की बातों को नहीं सुनो, मन ये कह रहा है मन वो कह रहा है, बुद्धि से विचार करो, मन में जो बात आती है उसको बुद्धि बुद्धि लगा के तो विचार करना कि इसको यदि हम करेंगे तो उसका क्या अच्छा परिणाम होगा और क्या बुरा परिणाम होगा, इसे विचार करके फिर बाद में करना चाहिए। यदि हमें लगेगा कि नहीं ये हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है ठीक है तब हम करें, अगर भक्ति में प्रतिकूल है नहीं करें, चाहे कितना भी अच्छा लगे चाहे कितनी बार मन कहे, अगर भक्ति के लिए वो ठीक नहीं है प्रतिकूल है तो नहीं करना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भक्ति के लिए ठीक है तो उसको करना चाहिए। तो ये मन सदा सर्वदा ये माया के वस्तु होते हैं, और हम जब भक्तों के संग में नहीं रहते हैं भगवत श्रवण नहीं करते हैं उसका मतलब क्या, हम अपने मन की बात को सुनते हैं और मन माया में है, और मन माया में होने के कारण हम हमारे मन में बहुत सी कामनाएं आ जाती है इतना सुनने पर। तो व्यक्ति को उस समय मन को अपने बसोबस्त करना है, मन को कंट्रोल में करना है, और कैसे वो कर सकता है कि मन में जैसे ही माया की बात आई सोचने के लिए उसको अधिक समय तक मन में नहीं रखना, उसको निकाल देना है।
जैसे कोई सामने आ गया
यही तो साधना है, हम अभी भक्त बने नहीं है, हम तो भक्त बनने के लिए साधना कर रहे हैं, फिर दीक्षा ले लेना है भक्त नहीं बन जाना है, दीक्षा लेने से हम गुरु वैष्णव के आश्रय में रहकर साधना प्रारंभ करते हैं, और अपने मन को जब तक हम अपने बस में नहीं करते हैं इसका मतलब साधना में हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, जब साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तब हम भक्त बन सकते हैं। अभी तो प्रयास कर रहे हैं साधना कर रहे हैं इसलिए कभी कभी पता नहीं चलता है हम आराम तक सोचने लगते हैं माया के बारे में, तब तुरंत आता है अरे हम क्या सोच रहे हैं, तो फिर हम मन को हटा रहे हैं इससे, भगवान के बारे में सोचते हैं या भगवान को लाते हैं ध्यान में। तो इस बार इस प्रकार बार बार होने से फिर आप हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे नहीं पहले से हमें ये माया को हटाना, आधा घंटा नहीं सोचना, आधा घंटा सोच लेंगे तो तब तक तो फिर दूसरे इंद्रिया भी काम अपना शुरू कर देगी, मन इंद्रियों के इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो मन में आधा घंटा सोच ले मतलब दूसरी इंद्रियां तो भोग के लिए और प्रभुत हो रहे, फिर इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए आधा घंटा सोचने के लिए मन को कभी नहीं जाना, हर समय सवेरे रहना, कभी भी माया की बात मन में आती है तो तुरंत उसको मुक्त कर सकते हैं मन, और कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण के रूप के बारे में सोचना और कृष्ण के लीलाओं के बारे में सोचना, अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो जोर जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर जोर से उठाना कृष्ण को बैठू है गुरु भाई, इसका मतलब भगवान कृष्ण मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता करे, ये माया मुझे पता रही। और भगवान कहते हैं माया को अतिक्रम करना बहुत कठिन है, और जो मेरी शरण में आता है वही माया से बच सकता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो जब करके भगवान कृष्ण को बैठक होकर प्रचार में कृष्ण की सहायता करेगी, थैंक्स हाथ उठा कर माया मेरे रुके नहीं रुक रहे, आप कृपा करिए माया को हटाए, मेरे मन को आपके चरण में लगाए। तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण सहायता करें, क्योंकि वो ऋषि कहते हैं हम इंद्रियों के स्वामी हैं, हम अपनी इंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर सकते, हम कृष्ण कर सकते हैं एक सेकंड तो उनका आश्रय रहना है। इसलिए मन में अधिक समय तक नहीं सोचना माया के बारे में,
दस करते हैं तो उसको ध्यान में सुनना चाहिए। और जो महाराज को कहते हैं ठीक है दस करने के समय अगर भगवान को दिया या ध्यान सुनना चाहिए पढ़ा ली, तो मैंने अपने देखा कि मैं जब करता हूँ जब सुनता हूँ ठीक है, अगर नहीं सुनता हूँ कुछ सोचता हूँ इधर तो जब मेरा मकान का हो जाता है, और उस समय मैं सोचता हूँ ठीक है भगवान यहाँ आए ये या देखती है तो कुछ समय सोचता हूँ उसके अंदर याद रहता है
भगवान के बारे में सोचना चाहिए या जो कुछ सुनना चाहिए इसी बात
पहले उस समय को पता नहीं चलता है, जब मान लो किसी लेगा अंधता के बात है उसी को सोचे सोचते सोचते
कोई ध्यान ही नहीं है भगवान के बारे में सोच रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जब का तो यही उद्देश्य है कि भगवान के चिंतन में मग्न रहा, कृष्ण के चिंतन में मग्न रहा। अगर आप
आया होता है महान को सुनते मन को भागता है तो मन कहीं भाग जाता है, किसी का दूसरा चिंतन कर जाता है और इसमें खाली जब करते हैं उसमें मदद कर रहे हैं, पर इसमें कुछ लीला जो हमारे बताए हैं इसी को सुनते हुए अगर करते हैं तो कम से कम उसमें मन घटता है और लीला में जाता है। और
अगर दूसरे चिंता कर रहे हैं तो फिर मन लगे, अगर भगवान की चिंता कर रहे हैं भगवान की लीला की चिंता कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भगवान का नाम और भगवान उनकी लीला रूप इसमें कोई अंतर नहीं, हम भगवान के नाम जप करके नाम के उच्चारण को सुन रहे हैं या भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं या लीला का स्मरण कर रहे हैं, तो एक लक्षण भगवान की चिंता में हम इनमें गुजर कर रहे हैं। तो जिसका मन जैसे नाम में रहता है नाम में रुचि ले रहा है ठीक रहता है, लीला में जो रुचि रहा रहता है और इधर उधर नहीं आएंगे।
बताया
है कि नाम में ध्यान नहीं होता है और दूसरी बात चिंता करता है तब वो नमक है, अगर नाम में ध्यान नहीं है तो लेकिन भगवान की लीला के बारे में सोच ध्यान तो चिंता नहीं, वो तो नाम और भगवान की लीला भी ना देखिए हम लोग उस स्थिति में होना चाहिए, यदि कोई चाहेगा कि हम खाना पीना छोड़ के और शरीर त्याग दें हाँ तो इसका केवल खाना पीना छोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, भगवान के चिंतन में रहना मुख्य उद्देश्य है। तो आत्महत्या करने से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं हो जाता, या कृष्ण को हम बाध्य नहीं कर सकते कि हम खाना पीना छोड़ के हम कृष्ण को प्रसन्न कर लें। जैसे सनातन गोस्वामी ने भी ऐसा सोचा, कहीं सनातन गोस्वामी जब जा रहे थे जगन्नाथ पुरी, तो उस समय पैदल जा रहे थे और रास्ते में अलग अलग स्थानों से पानी पी रहे थे, तो उन्होंने कुछ चर्मरोग हो गया। चर्मरोग होने से उससे शरीर से थोड़ा दुर्गंध आता था या कुछ ये निकलता था, उससे क्या बोलते हैं, तो उन्होंने सोचा कि शरीर में उसके अभाव भगवान की सेवा में नहीं आएगा, इस तरह हम पूरी जाएंगे रथ यात्रा के टाइम में, रथ के आगे हम अपने शरीर को विसर्जित कर देंगे, रथ का चक्का कट जाएगा, मर जाएगा। और इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने समझा कि वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, तो उन्होंने तो सनातन गोस्वामी से कहा कि यदि ऐसा होता कि कोई रथ के सामने आत्महत्या करके भगवान को पा जाता तो मैं हजारों बार आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो ये तरीका नहीं है भगवान को पाने का, भगवान को प्राप्त होने का तरीका है उनको प्रसन्न करना, सेवा करना। और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते कि हमने खाना पीना छोड़ दिया और हम शरीर त्याग देंगे, हम भगवान दर्शन दें या भगवान को प्राप्त होंगे, हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, यदि किसी का भगवान
फल दिया तो ऐसा
सोचते हैं, आत्महत्या करने से तो फल है भूत बनना, आत्महत्या का फल है
ना, आत्महत्या तो बहुत
तरीका
भी है।
आप कह रहे हैं धाम में आत्महत्या किया तो धाम में भूत बनेगा, हाँ तो धाम में भूत बनेगा।
जैसे वही संसार जगत में तो बहुत लोग दिखाई पड़ता है, लेकिन किसी किसी मन में आता है ना भगवान धाम में जाके भगवान
जब करते चलते कैसे स्वीकार कर रहे हैं,
खाना पीना छोड़ देता है, माता पिता का चीज ना दी जाते
नहीं, अलग हो रहा है, अलग स्थानों पर जैसे कोई भूत बनाया तो कष्ट भक्त रहेगा भूत बनना, किन्तु यहाँ धाम में भी अगर कोई भूत बनाया आत्महत्या करता तो उसमें यहाँ बहुत सुविधा है धाम में, यहाँ की धाम में यदि कोई पशु पक्षी बन के भी जन्म लेता है फिर भी यहाँ सुविधा है क्या कि यहाँ भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, भगवान का नाम श्रवण करने के लिए मिलता है, तो वो लोग इससे पाप से मुक्त हो सकते हैं आसानी से, जबकि दूसरे स्थान पर ये उपलब्ध नहीं होता ये सुविधा। इसलिए धाम में कुछ भी कर रहे हैं उसमें सुविधा ही है, चाहे एक दम में हमें प्राप्त नहीं होगा, जैसे कोई लोग पाप करते हैं धाम में, बहुत सारे लोग पाप कर्म करते हैं धाम में, तो दूसरे दिन में वो सुअर कुत्ता बंदर बंदी जन्म होंगे धाम में, किंतु उसमें जो उस जीवन का जो कष्ट है उसको भोग करने के बाद वो लोग मुक्त हो सकते, क्योंकि पापों से मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त हो सकते, ये सुविधा है धाम धाम
में। तो ऐसा बहुत सारी पड़ता है, जैसा है भारत में जो ऐसा बहुत सारी पड़ता है, जैसा कह रहे थे तो यहाँ जो भी रहता है धाम में उसकी जन्म पूरा हो गया तो भगवान धाम जाएगा, जब नहीं हुआ है तो अपने स्तर को भोगने के लिए उसको